रात के लगभग 9 बज रहे थे। अंजलि चौहान एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी निपटाने के बाद अपने घर को लौट रही थी। अंजलि ने अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया से बाहर निकाली ही थी कि एक दूसरी गाड़ी ने आकर उसका रास्ता काट दिया। अंजलि के कई बार हॉर्न बजाने के बावजूद वो गाड़ी उसके आगे से नहीं हटी, तो अंजलि को बाहर आना ही पड़ा। अंजलि गुस्से में बाहर आई और दूसरी गाड़ी के ड्राइविंग साइट की विंडो को खटखटाया। जैसे ही विंडो डाउन हुई, अंजलि ने अपना थूक निगला। वो कुछ कदम पीछे हो गई। अंजलि ने धीरे से कांपती आवाज में कहा, आदित्य मर्चेंट? गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आदित्य मर्चेंट बैठा हुआ था। अंजलि के मुंह से अपना नाम सुनकर आदित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। आदित्य ने सिर हिलाया और गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा, चलो तुम्हें मेरा नाम तो याद है, पूरे 28 साल बाद मिल रहे हैं हम, नहीं उससे भी थोड़ा टाइम कम ज्यादा हो गया होगा। आप यहाँ क्यों आए हो? देखो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, पहले की बात अलग है और अब की अलग, अंजलि ने खुद को मजबूत करके जवाब दिया। अंजलि के चेहरे पर घबराहट के भाव देखकर आदित्य ने शांत स्वर में कहा, हे जस्ट रिलैक्स। मैं आदित्य अपनी बात पूरी करता उससे पहले उसकी बात बीच में काटते हुए अंजलि गुस्से में बोली, रियली मिस्टर मर्चेंट, आप अचानक क्यों पूरे 28 साल बाद मेरे सामने आकर मुझे रिलैक्स रहने का बोल रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं आप बिना किसी वजह किसी के आगे आकर खड़े नहीं हो जाएंगे। तो तुम समझ गई हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आदित्य ने गर्दन हिलाकर पूछा। हाँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं, उस वक्त जरूर थी जो अपना पैशन फॉलो करने के चक्कर में आपकी बातों में आ गई। सॉरी टू से मिस्टर मर्चेंट, लेकिन मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, सो लेट मी गो, अंजलि ने हल्के सख्ती से कहा। पहले आदित्य को देखकर उसे थोड़ा डर लग रहा था, पर अब फिर से वो पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी, जो कि उसकी रियल पर्सनैलिटी थी। अपनी बात खत्म करके अंजलि वहां से जाने को हुई, तभी आदित्य ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया था। अंजलि उसकी तरफ पलटी और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है? बाकी चीज़ों का ना सही, लेकिन इस बात का ही लिहाज कर लीजिए कि मैं आपकी स्टूडेंट थी। हर एक बात का लिहाज है, तभी यहाँ बात करने के लिए आया हूँ, वरना तुम जानती हो ना कि हमें किसी से बात करनी होती है उस तक चलकर हम नहीं जाते हैं, आदित्य ने खतरनाक लहजे में कहा। ये उसका अंदाज नहीं था कि वो किसी को धमकी दे। मर्चेंट फैमिली में राधिका के बाद सबसे डिसेंट और शांत स्वभाव का वही था, लेकिन गुस्सा आने पर आदित्य का रवैया और भी खतरनाक हो जाता था। अंजलि ने गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल किया। उसके चेहरे के भाव नॉर्मल होते ही आदित्य ने उसके हाथ को छोड़ दिया था। आदित्य ने अंजलि की तरफ देखकर सामान्य अंदाज में कहा, आगे से मुझसे बदतमीजी से बात मत करना, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं यहाँ तुमसे इतनी दूर बात करने के लिए आया हूँ, तो बिना बात किए नहीं जाऊँगा, बेहतर यही होगा कि मेरे साथ चलो। मजबूरन अंजलि को हाँ कहना पड़ा। वो उसे लेकर कहीं और नहीं बल्कि अपने घर जा रही थी, जहाँ वो अकेली रहती थी। ऐसा नहीं था कि अंजलि की फैमिली नहीं थी, पर वो अब इंडिपेंडेंट हो गई थी, इस वजह से उसे अकेला रहना ही पसंद था। लगभग एक घंटे बाद अंजलि आदित्य के साथ दिल्ली के एक पोश इलाके में पहुंच चुकी थी, जहां उसका एक शानदार लग्जूरियस अपार्टमेंट था। अपनी गाड़ी पार्क करके अंजलि अंदर आई। उसका घर काफी शानदार था। अंजलि वहां अकेले रहती थी, इसका मतलब ये भी साफ था कि ये उसने अपने दम पर ही बनाया था। आदित्य ने एक नज़र घर की तरफ दौड़ाई और फिर अंजलि की तरफ देखकर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने खुद को साबित कर ही दिया। हाँ, और मुझे खुद को साबित करने में काफी कुर्बानियां भी देनी पड़ी, अंजलि ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुककर बोली, मैं अच्छे से जानती हूँ आप यहाँ क्यों आए होंगे, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, वो बच्चा मेरे पास नहीं है, मैंने प्री मेच्योर डिलीवरी करवाकर उसे उसके बाप के पास छोड़ दिया था। अगर आपको उस लड़के से बात करनी है तो राजवंश फैमिली से कॉन्टैक्ट करना होगा। आदित्य अंजलि के चेहरे की तरफ गौर से देख रहे थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके चेहरे पर अफसोस का कोई भाव नहीं था। वहीं आदित्य के चेहरे के भाव सब बता रहे थे कि पिछले बीते सालों में अंजलि के साथ जो भी हुआ था वो उनसे छुपा हुआ नहीं था। आदित्य को नॉर्मल रिएक्ट करते देखकर अंजलि ने हैरानी जताते हुए पूछा, इसका मतलब आप इस बारे में जानते हैं? अगर सब पता ही है तो फिर मेरे पास आने का क्या मतलब हुआ? तुम्हारे पास ही आऊँगा, क्योंकि खुद पर एक्सपेरिमेंट करवाने का फैसला तुम्हारा था। तुमने बदले में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तुम मना नहीं कर सकती, आदित्य ने सिर हिलाकर कहा। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं वो एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर नहीं, मेरे बच्चे के ऊपर किया गया था, और वो बच्चा मेरे साथ नहीं है, अब आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो, अंजलि ने तेज और सख्त आवाज़ में कहा। वो चिढ़ गई थी। इसी के साथ अंजलि और आदित्य के दिमाग में 29 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। उस वक्त मर्चेंट फैमिली दिल्ली में ही रहती थी। अंजलि उस समय अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। उसे मेडिकल फील्ड में जाना था, पर प्रशांत के साथ ज़बरदस्ती की शादी में बंधने के बाद उसके सारे सपने जैसे टूट कर रह गए थे। शादी को एक महीना ही बीता था कि उसके ऊपर प्रेगनेंसी नाम का बम फूट चुका था, जिसके बाद तो वो चाहकर भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। अंजलि उस वक्त दिल्ली आई हुई थी। वो अपने प्रोफेसर यानी आदित्य मर्चेंट से मिली। उस वक्त पहली बार अंजलि मर्चेंट विला गई थी। मर्चेंट विला दिल्ली के किसी बड़े इलाके में ना बना होकर आउट एरिया में बना हुआ था और काफ़ी बड़ा घर था।
अंजलि खोई हुई और परेशान लग रही थी। उसे इस तरह देखकर आदित्य ने पूछा, मुझे लगा इस साल तुम्हारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, पर यहाँ तो तुमने अपना घर बसा लिया। मैं 2 महीने के लिए बाहर गया था, आने पर पता चला कि तुमने शादी कर ली है, वो भी अपने से इतनी बड़ी उम्र के आदमी से। खैर जो भी हुआ जाने दो, तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो, मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। मैं नहीं कर सकती सर, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अंजलि ने धीमी आवाज में नम आंखों के साथ कहा। अपने सपनों को इस तरह टूटे देखकर अंजलि को बहुत बुरा लग रहा था। उसने आदित्य की तरफ देखा और बोली, मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हूँ, मैं चाहकर भी अबॉर्शन नहीं करवा सकती, क्योंकि राजवंश फैमिली और चौहान फैमिली से बिलोंग करने की वजह से डॉक्टर के पास जाते ही उन तक न्यूज़ पहुंच जाएगी। अगर मैंने इस बच्चे को पैदा किया तो सच में मेरे सारे सपने टूट कर रह जाएंगे। एनी टाइम बॉडीगार्ड मेरे साथ रहते हैं, यहाँ भी वो मेरे साथ आए हैं। पहले थोड़ी बहुत उम्मीद थी, पर अब लगता है मेरी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गई है। आदित्य ने एक नज़र अंजलि की तरफ देखा और फिर कहा, मेरे पास एक तरीका है, पर तुम्हें बदले में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि यहाँ जो भी होगा वो तुम किसी से नहीं कहोगी। इसके बदले में मुझे मेरे सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा, तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मुझे हर तरह की कॉन्ट्रैक्ट और शर्त मंजूर है, क्योंकि मेरा साथ देने वाला अब वैसे भी कोई नहीं बचा है, अंजलि ने तुरंत ही फैसला लेते हुए कहा, बगैर ये जाने कि आदित्य के इरादे क्या थे। उसके बाद आदित्य अंजलि को अपने घर के बेसमेंट में लेकर गया, जहां एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल और लेबोरेटरी बनी हुई थी। उसे देखकर अंजलि हैरान रह गई, आज से पहले उसने इतनी बड़ी लेबोरेटरी नहीं देखी थी।
आदित्य ने अंजलि के चेहरे के भाव देखकर कहा, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास कि तुम्हें सब कुछ समझा सकूं। फिलहाल यही जान लो कि हम एक अलग तरह का ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे हमारी जीन्स में बदलाव आने लगता है। तुम प्रेग्नेंट हो, अगर तुम प्रेग्नेंसी से पहले आती तो इस एक्सपेरिमेंट का असर तुम्हारे ऊपर होता। अगर तुम फ्यूचर में प्रेग्नेंट होती तो तुम्हारा बच्चा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इंटेलिजेंट पैदा होता, लेकिन प्रेगनेंसी पीरियड में तुम ये एक्सपेरिमेंट करवाओगी तो इसका सीधा सीधा असर तुम्हारे बच्चे पर होगा। आई प्रॉमिस तुम्हारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें हमारा एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनना होगा। अंजलि ने तुरंत ही हाँ में सिर हिला दिया था। वो जल्दी से बोली, मुझे मंजूर है, पूरी बात सुन लो। मैं इस बात की गारंटी नहीं देती हूँ कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ही होगा, क्योंकि पहले बहुत कम मामलों में हमें सफलता मिली है। बच्चे की जान जा सकती है, अंजलि, आदित्य ने बताया। अंजलि कुछ पल सोच में पड़ गई। उसे अपने बच्चे से छुटकारा चाहिए था, लेकिन अगर आदित्य का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता तो उसे उस बच्चे को पैदा करना पड़ता। अंजलि ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं इस बच्चे के चक्कर में अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकती। क्या पता आपका ये सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो मेरे सिर एक और मुसीबत आ जाएगी। अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया तो वो बच्चा मर्चेंट फैमिली का होगा। तुम्हें बस बच्चा पैदा करना है, उसके बाद उसे हॉस्पिटल से हम तक कैसे लाना है ये इंतजाम हम कर लेंगे, आदित्य ने बताया। अंजलि उस वक्त इस उम्र में नहीं थी कि वो कोई ठोस कदम उठा सके। उसने बिना सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट किया और वहां होने वाले एक्सपेरिमेंट को खुद की बॉडी पर होने दिया। इस प्रक्रिया में पूरे 2 घंटे का टाइम लगा था। अंजलि उसके बाद 2 से 3 बार वहां पर आई थी। अनफॉर्चुनेटली उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं हुई थी, लेकिन उसने 7 महीने में ही बच्चे को जन्म दिया और वहां से चली आई थी। मर्चेंट फैमिली क्या थी तो अभिमन्यु के पैदा होते ही हासिल कर सकती थी, लेकिन डॉक्टर और अस्पताल से उन्हें यही पता चला था कि बच्चे की हालत बहुत खराब है और वो नहीं बच पाएगा। इतना कमजोर बच्चा वैसे भी उनके कोई काम का नहीं था, तो उन्होंने इस मामले को जाने दिया। पुरानी बातें याद आते ही अंजलि ने आदित्य से कहा, मेरा उस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके पास है। आपको वो चाहिए तो उसे किडनैप करवा लीजिए और फिर जो करना है कीजिए। क्या वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चा है, आदित्य ने सीधे सीधे पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने उसे देखा तक नहीं है, अंजलि ने बेरुखी से कहा। आदित्य ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अभिमन्यु के बारे में सर्च करने लगा। अभिमन्यु का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, इस वजह से उसे ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हुई, लेकिन राजवंश एम्पायर को वही संभाल रहा था ये उन्हें पता चल गया था। आदित्य ने गहरी सांस लेकर कहा, जैसा हमने सोचा था वो लड़का वैसा ही है। मुझे किसी भी हाल में तुम्हारा बेटा चाहिए अंजलि, वो कोई आम बच्चा नहीं है। वो मेरे पास नहीं है जो उठाकर आपको दे दूं, इतना पता लगा लिया है तो आगे आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाली। प्लीज अब जाइए और मुझे शांति से जीने दीजिए, अंजलि ने चिढ़ते हुए कहा। उसके इतना गुस्सा करने के बावजूद आदित्य वहां बिना किसी भाव के खड़ा था। अंजलि को इससे और भी इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि आदित्य इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि तुम उस बच्चे को संभाल कर रखो जो तुम नहीं कर पाई। फिलहाल तुम्हारा काम ये है कि उस बच्चे तक तुम मुझे पहुंचाओगी, बाकी जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता मैं तुम्हारे घर पर ही रहूंगा। लेकिन मैं कैसे, मैंने तो देखा तक नहीं है, अंजलि ने हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ कहा। आदित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बेपरवाही से सिर हिला दिया। वो एक कमरे की तरफ जाने लगा जो बाहर की तरफ बना हुआ था। वो जरूर गेस्ट रूम होगा, थोड़ी देर बाद मुझे डिनर मिल जाना चाहिए, मैंने कुछ नहीं खाया है, आदित्य ने बिना अंजलि की तरफ देखे कहा और कमरे के अंदर चला गया। अंजलि गुस्से में पैर पटकती रह गई थी।
जिस बच्चे को उसने देखा तक नहीं था, अब आदित्य के कहने पर उसे अभिमन्यु से मिलना पड़ रहा था। साथ ही उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी कि वो अभिमन्यु को कैसे मर्चेंट फैमिली तक पहुंचाए। दूसरी तरफ अभिमन्यु अपने घर पहुंच चुका था। अभिमन्यु रात के लगभग 10 बजे के करीब घर आया था। उसने देखा नैना वहां गौतम मित्तल और कियारा के साथ आई हुई थी। कियारा चेहरे से काफी उदास लग रही थी और उसकी नजरें इशिका को ही ढूंढ रही थी। इशिका के मरने की खबर ने उसे बहुत दुख पहुंचाया था। अभिमन्यु ने उनकी तरफ देखा और मन ही मन कहा, ओ गॉड, नहीं, एक बार मुझे इनके सामने झूठा दुख जताना होगा। इशिका के जिंदा होने के बावजूद उसकी मौत का मातम मनाना होगा। अभिमन्यु ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस ब्लैंक कर लिए थे। आगे की तरफ जाते ही अभिमन्यु ने एक नजर उनकी तरफ देखा और बिना किसी भाव के कहा, दादी, मैं सोने जा रहा हूँ, आप डिनर कर लीजिएगा, मैंने बाहर खा लिया है। अभिमन्यु के वहां से जाने का कारण कुछ और ही था, जबकि उन सबको यही लग रहा था कि अभिमन्यु अभी तक इशिका के जाने के दुख से उभर नहीं पाया है। अभिमन्यु ने अपने कदम कुछ ही आगे बढ़ाए थे कि कियारा ने पीछे से कहा, मिस्टर राजवंश, मैं जानती हूँ आपके लिए इशिका को भूल पाना आसान नहीं है, हम सब भी उसके जाने से बहुत दुखी हैं, पर प्लीज आप इस तरह अपने दुख को अंदर दबाकर मत रखिए, अंदर की घुटन हमें बीमार और बर्बाद कर देती है। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और कियारा की तरफ पलट कर कहा, आपको ये क्यों लगता है मिस मित्तल कि मैं दुखी या परेशान हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात को आपका भाई भी काम करके देर से आता होगा, उस वक्त उसका भी मन नहीं करता होगा कि वो किसी से बात करे, एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं भी थक गया हूँ, एंड आई नीड अ गुड स्लीप। अभिमन्यु ने उन्हें काफी बेरुखी से जवाब दिया और वहां से जाने लगा। उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए और फिर वापस उनकी तरफ पलट कर कहा, अगर आप यहाँ हमदर्दी जताने के लिए आई हैं कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही है, तो उसकी जरूरत नहीं है। मैं इतना इमेच्योर नहीं हूँ कि इस बात को ना समझ पाऊँ कि अगर कोई इंसान इस दुनिया में नहीं रहा है तो वो वापस नहीं लौट आएगा। टाइम के साथ सबको मूव ऑन करना पड़ता है, उम्मीद है आप भी कर लेंगी। अभिमन्यु के शब्द काफी कड़वे थे, उसके बावजूद कियारा को बुरा नहीं लगा। मित्तल फैमिली को यही लग रहा था कि अभिमन्यु इतना तकलीफ में है कि वो इशिका का जिक्र तक नहीं करना चाहता। तो वही उनसे अलग ऊपर अपने कमरे के आगे खड़े नक्श ने जब अभिमन्यु की बात सुनी तो उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। चाचू इतना नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी, अचानक दिल्ली क्यों आए होंगे, सिर्फ बिजनेस कारण नहीं हो सकता है। पहले तो वो इस बात को मानने तक से इनकार कर रहे थे कि इशिका मर गई है, डेड बॉडी के डीएनए रिपोर्ट तक को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, उनके हिसाब से इशिका जिंदा थी और आज सबके सामने उसके मरने की बात कह रहे हैं, कहीं इशिका सच में जिंदा तो नहीं और उसके बारे में सिर्फ चाचू को पता हो। अपने मन में सोचते हुए नक्श की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं, मानो वो सब समझ गया हो। डेक्सिट्स डेक्सिट्स, फिलहाल के लिए इतना ही, क्या लगता है नक्श सच का पता लगा लेगा? अगर नक्श को पता चला तो सारा प्लान फंस हो जाएगा। चलिए पढ़कर रेटिंग और कमेंट कर दीजिएगा।